نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں موقع دیا کہ اس وقت یہاں مل کے اس کی کوئی بات کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم سب تک رکھیں وہ ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے پہنچی. تو آج ہم تھوڑا سا یہاں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے, کیوں کریں اور کیسے کریں. میرا خیال ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اور کیوں نہ کرے, کیونکہ انہی کے ذریعے سے تو اتنا پیارا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات جو انسانوں پہ کیے, لیکن اس میں سے کسی بھی احسان کا ذکر اس طرح نہیں کیا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر کے سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کیا؟ اس بات فیہم رسول من انفسہم, کہ ان کے پاس انہی کا ہم جنس رسول بھیجا. یعنی رسول کی آمد انسانوں پہ ایک اللہ کا احسان ہے. کیا کیا اس رسول نے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یعنی قرآن پاک عربک لفظوں میں ہم سب تک پہنچایا اس نبی نے. اور کیا کیا؟ ویزکیہم, اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا, یعنی ان کو گناہوں سے پاک کر کے اور نیکیوں کی رغبت دلاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. بہت ہی پیاری آیت ہے یہ, اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جو منصب تھے ان کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تو محبت کرتا ہوں اور نبی سے نہیں کرتا, تو اس کا ایمان مقبول نہیں. کوئی یہ کہے کہ قرآن میرے لیے کافی ہے اور میں حدیث کو نہیں مانتا, تو اس کے اسلام میں کمی ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دے لیکن محمد رسول اللہ نہ کہے, تو اس کا ایمان مقبول نہیں. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے بھی تو دیکھیں کہ ان سے محبت کیسے کی جائے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی علامت ہمارے اندر نظر آتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بھی اسی طرح محبت محسوس ہوتی ہے جیسے آپ کے صحابہ کرام کو محسوس ہوتی تھی, جو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, جنہوں نے آپ کی صحبت پائی, آپ سے علم سیکھا, آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں مشکلات سہیں, تاب قسم کی محبت کرتے تھے کہ ان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں, آپ کا قرب پائیں, آپ کی محبت کو پائیں. اسی طرح کا ایک محبت کرنے والا ساتھی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کے صحابی تھے, وہ آئے تو چہرہ اداس تھا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ اداس کیوں دکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایک خیال آیا اور اس خیال نے مجھے اداس کر دیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں ادھر رہتا ہوں, میں جب اپنے کام میں ہوتا ہوں مجھے ایک دم آپ کی یاد ستاتی ہے, آپ کی محبت میرے دل میں آتی ہے, تو میں فوراً یہاں آ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرے دل کو قرار پہنچتا ہے. اسی طرح میں دن بھر جب دل چاہتا ہے میں آپ کو آ کے دیکھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک ملتی ہے, لیکن جس چیز نے مجھے آج اداس کر دیا وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی موت یاد آ گئی اور آپ کی موت بھی یاد آ گئی, اور میں نے سوچا کہ مرنے کے بعد آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ اور اعلیٰ مقام میں ہوں گے. میں اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو میں تو بالکل ابتدائی درجے کی جنت میں ہوں گا, وہاں اگر مجھے آپ کی یاد ستائی تو میں کیا کروں گا؟ سوال دیکھیے اور جواب دیکھیے, اور ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. اتنی زندگی میں کبھی ایک بار بھی ایسا کوئی خیال ہمارے دلوں کو گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار، آپ سے ملاقات کی کوشش اور آپ کی صحبت کو پانے کی اتنی تڑپ دل میں ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو خوش کر دیا یہ کہہ کے کہ ساتھی غم نہ کرو، المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی. اگر ہم اس بات کو دیکھیں اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے دعوے کو دیکھیں تو کیا واقعی ہم اپنے بارے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے؟ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے انسان دنیا میں بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اگر آج دنیا میں دیکھیں تو ہمیں اپنے دوست کیوں اچھے لگتے ہیں؟ بعض دفعہ عزیز و اقارب رشتہ داروں سے زیادہ ہمیں اپنے دوست پیارے لگتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے دل ملتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہماری پسند ناپسند ملتی ہے. تو محبت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ سملیرٹی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو سملیٹ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خود بخود محبت آنے لگتی ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز کی زندگی بسر کر کے گئے اور جس کی دعوت وہ اپنی امت کو دے کے گئے، اگر آج ہماری زندگی میں وہ رنگ نہیں جھلکے گا تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہم سے بیزار ہوں یا بے نیاز ہوں. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عملوں کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کا عموماً جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ جب آپ کا نام آتا ہے تو درود پڑھتے ہیں، بعض دفعہ انگوٹھوں کو چومنے لگتے ہیں. بعض دفعہ ہم دیکھا گیا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر اس میں کچھ اور اس طرح کے کام جو ایک ہر جگہ میں معروف ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا، یعنی آپ کی جسمانی یعنی ساخت، آپ کی زلفوں کا قصہ، آپ کی اکثر نعتوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور بعض دفعہ تو اتنا مبالغہ ہو جاتا ہے کہ شرک تک بات آ جاتی ہے، ایگزیجریشن ہونے لگتا ہے. تو اس صورت میں اگر دیکھیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف لفظی محبت کرنے سے بات بن جاتی ہے؟ اگر ایسی جنت ملنی ہوتی تو جنت میں جانے کا حقدار سب سے زیادہ کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، باپ بن کے پالا، کسی کو ان کی زندگی میں جرت نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھائے، آپ کی اتنی مدد کی. 3 سال شاب ابی طالب میں انہوں نے بھی درختوں کے پتے کھائے اور وہاں قید رہے، پورا سوشل بائیکاٹ رہا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. لیکن کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. کیا کہا؟ کہ آپ نے ان کے بستر مرگ پہ بھی کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی سفارش کر دوں گا. لیکن آخری بات جس نے ان کے قدموں کو روک دیا وہ کیا تھی؟ ذات برادری، خاندان، تقلید، ابا اجداد. کہا نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ ہوں. لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے مرتے اپنا دین چھوڑ دیا؟ اور یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیزار تھے. پھر آپ نے ان کے مرنے کا کوئی غم نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ چلو میں ان کی کفن دفن میں ایسی شرم سے بیٹھ جاؤں، آخر میرا چچا تھا. نہیں، البغض فی اللہ والحب فی اللہ، کہ مومن کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور مومن کا بغض، نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے. زندگی بھر کوشش میں رہے کہ ان کو اسلام مل جائے، لیکن جب موت پہ خاتمہ ہوا تو آپ ان سے بے نیاز ہو گئے. حالانکہ آپ کے سگے چچا تھے، لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ آپ نے مرنے کے بعد کچھ ان کی رسومات کی ہوں یا بعد میں جا کے ان کی قبر پہ کچھ کیا ہو، صرف یہ کہہ کے کہ خاندان کا معاملہ ہے. کیا کریں، مجبور ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنی دفعہ مجبور ہوتے ہیں. ہم تو دن میں کئی بار مجبور ہوتے ہیں، کبھی گھر والوں کے ہاتھوں، کبھی بچوں کے ہاتھوں، کبھی سسرال کے ہاتھوں، کبھی برادری کے ہاتھوں، اور سب سے پیچھے پڑتی ہے بات تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پیچھے پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس کو کیا ہوگا؟ کہ اس کے پاؤں میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی حدت سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اور وہ شخص اللہ کے نبی کا چچا ابو طالب ہوگا. غور کرنے کی بات ہے. ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرنے والا، آپ کو کھلانے والا، پلانے والا، راتوں کو آپ کے بستر پہ سو جاتے کہ جائیے آپ دوسری جگہ سوئیں. کیوں؟ کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہے تو وہ آپ کی جگہ مجھے قتل کر دے. اتنی محبت. لیکن یہ محبت تھی نبی کی ذات کے ساتھ، نبی کی بات سے پیار نہیں تھا. جب تک اللہ کے نبی کی بات سے پیار نہیں ہوگا انسان جنت میں جانے کا اہل نہیں ہو سکتا. ایک اور مثال آپ ہی کا چچا ابو لہب کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی کہ میرے بھائی, اور عبداللہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب بھائی کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے بعد اس کے بیٹے کی ولادت ہو تو کتنی خوشی نہ ہوگی اس وقت. اور اس نے اتنی خوشی کا اظہار کیا اللہ کے نبی کی پیدائش کا سن کے کہ وہ لونڈی صویبہ جس نے آ کے خبر دی اس کو کہا تو آزاد ہے, تو اتنی اچھی خبر لے کے آئی ہے, جا تو آزاد ہے, اس کو چھوڑ دیا جاؤ. لیکن ذرا غور تو کیجئے, یعنی وہ چچا جو آپ کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے والا, خوشی سے پھولنے والا, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لوگو اللہ کو ایک مانو فلاح پا جاؤ گے, جب کلمہ توحید بلند کیا, جب اسلام کی دعوت دی, تو وہ کہنے لگا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ذرا غور سے دیکھے گا, جس دن محمد بن عبداللہ کی پیدائش ہوئی تو خوشی سے پھولے نہیں سمارا, لیکن جس دن وہی محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلے تو ان کے ساتھ بغض رکھا, اور سب سے زیادہ دشمنی آپ کی یہی کرتا تھا. آپ کا چچا بھی تھا, آپ کا ہمسایہ بھی تھا, اس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار ایک ساتھ تھی, آپ کی دو بیٹیوں کا سسر بھی تھا, لیکن اتنا دشمن کہ صبح فجر سے پہلے اس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی کہ کہیں رات کے اندھیروں میں نکلیں گے عبادت کے لیے تو ان کے قدموں میں کانٹے چبھیں گے, اپنے گھر کا کوڑا آپ کے اوپر پھینک دیتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو تنگ کرتے. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بغض کس بات کا تھا؟ کہ آپ کی بات اچھی نہیں لگتی تھی, آپ کا طریقہ اچھا نہیں لگتا تھا. آج ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تو ہم جوڑیں گے, لیکن جہاں بات آتی ہے اس نبی کے طریقوں کی, جہاں بات آتی ہے اس نبی کی سنتوں کی, جہاں ان کے جینے مرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے طریقوں کی بات آتی ہے, اس سے کتنی محبت ہے. یہ تو بڑی ایک بازاری قسم کی محبت ہو سکتی ہے کہ کسی کو ایک کارڈ خرید کے ایک موقع پہ دے دیا, کسی کو موقع آیا تو گفٹ دے دیا. اصل محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر رنگ جائے, اندر آ جائے, جب انسان ویسا بننے کی کوشش کرے جیسا کہ وہ ہو. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے بننا چاہتا ہے. اگر آج ہم اپنے حالات پہ دیکھیں تو عموماً دیکھ کے کیا کیا احساس غالب آتا ہے. آج ایک مجموعی طور پہ, آپ سب کی بات نہیں لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو ہم کس کو فالو کرتے ہیں, کن کا کلچر ہمارے ذہنوں پہ, ہم کن کی طرح بننا چاہتے ہیں, ہم کن کی طرح پہننا چاہتے ہیں, ہم کن کی طرح بولنا چاہتے ہیں, ہماری اٹھان کیسی ہے. المرء ما من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. کون سے کام کیے؟ اب میں آپ کے سامنے وہ ایک ایک کر کے رکھنا چاہوں گی, اور ہم سب دیکھیں اگر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ صرف زندگی کی جدائیاں ہیں, موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی, رب کا دیدار بھی ملے گا اور جنتیں بھی ملیں گی. لیکن اگر آج ہمارا مشن وہ نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا صرف محبت کر کے اور کیا صرف آپ کے نام کی نعتیں پڑھ کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اس لیے کہ عمل بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اسی سورۃ آل عمران کی آیت میں رکھے وہ کیا تھے, ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گی. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا. کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ان میں رسول بھیجا انہی کا ہم جنس. یہاں ایک چھوٹی سی عقیدے کی بات پیش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول ان کا ہم جنس بھیجا. ہم جنس کون ہوتا ہے؟ جو آپ ہی کے جنس کا ہے. انسان کی جنس انسان سے ملتی ہے, جنوں کی جنس جنوں سے ملے گی, فرشتوں کی جنس فرشتوں سے ملے گی. اب انسان بنا مٹی کا, ہم سب انسان ہیں, اور انسان کے سارے حواس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھے, وہ انسان تھے. اس کے برعکس آج کچھ لوگ محبت میں اتنا بڑے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کر دکھایا. اب بتائیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من انفسہم, وہ تمہارا ہم نفس ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ نور سے ہیں, یا تو پھر ہم مانے کہ ہم سارے بھی نور سے بنے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو محبت کی بنیاد پہ لوگوں کو ہوئی. یاد رکھیے کہ محبت انسان کو بعض دفعہ حدوں کو پامال کرنے کی دعوت دے دیتی ہے. بدنیتی نہیں ہوتی, کوئی برا ارادہ نہیں ہوتا, نہ سمجھی کی بات ہے, कम अकली की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लम को नूर कह दिया जाए। वो इंसान थे और इंसानों में से आए, और क्यों आए? यतलु अलैहिम आयातिही, अल्लाह के कुरान की आयतों की तिलावत करते थे। यानी नबी सल्लम का पहला काम क्या था? कुरान पाक की आयतों की तिलावत करना। आयतों की तिलावत से क्या मुराद है? यानी हमारे यहाँ तिलावत का एक आम मफहूम है, और वो क्या है कि ऊंची आवाज से कुरान पढ़ना किरत के साथ या तिलावत के साथ। हालांकि तिलावत और किरत में फर्क होता है। तिलावत का रूट क्या होता है? तला या तो तिलवन, यानी किसी चीज के पीछे लगना। तो जब हम तिलावत करते हैं तो उसमें मतलब क्या होता है कि कुरान पाक का जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं साथ साथ उसके मानी को भी समझ रहे हैं, यानी लफ्जों का पीछा मानी कर रहे हैं, मानियों के पीछा लफ्ज कर रहे हैं। यानी उनकी तिलावत कैसी होती है कि उनको समझ में आ रही होती है। हम सब अपने आप से पूछें, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं क्या हमें समझ आता है? कुरान पाक की एक एक आयत अपने अंदर समंदर रखती है मानी के, क्या हम समझते हैं? ठीक है, तर्जमे वाला कुरान सामने होता है तो हम उसको देख के पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ही वो निगाह से हटा क्या हमें याद रहता है? हम सब अपना हिसाब लें, इसमें किसी को किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं। कुरान पाक का कितना हिस्सा मैं पढ़ती हूँ और कितना मुझे समझ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस दौर में जब लोग बहुत मसरूफियत में हैं, फिर भी हर रोज़ कुरान पाक कुछ ना कुछ पढ़ने का रुझान है। फजर के बाद एक रुकू, दो रुकू, या दिन में या रात में लोग पढ़ते हैं। लेकिन असल बात क्या है कि जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते तो फिर उसके मुताबिक हमारे दिल में तब्दीली नहीं आती। वो लोग कुरान पढ़ते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते थे। वो लोग कुरान पढ़ते थे, उनकी आवाज़ों को सुन के गैर मुस्लिम जो थे वो इस्लाम की तरफ आने लगते थे। आज हम कुरान भी पढ़ते हैं तो उसमें कितनी गलतियां करते हैं। क्या हम उसको पूरे मखारिज से पढ़ते हैं? क्या हमें जबर जेर का सही पता है? जिंदगी की कितनी बहारें हमने देख ली लेकिन अभी तक हमें हा और खा का फर्क नहीं समझ में आया, अभी ता और त्वा का फर्क समझ नहीं आया। सा सा स्वा क्यों है? कभी आपने अल्फाबेटिक को खोल के देखा? सोचते होंगे आप भी कभी, ये इतने हा क्यों है? हम तो सबको हा ही कहते हैं, हा खा खा सब कुछ हा है। सा की आवाज देख लें, सीन की आवाज देख लें, एक ही आवाज है तो क्या था, एक ही बनती। लेकिन हालांकि हर लफ्ज की एक अलग पहचान है। सा जहां से अदा होता है वहां से सा नहीं होता। सीन की आवाज और है, स्वाद की आवाज और है, सा की आवाज और है। तो ये फर्क है, क्या हम इसको पहचानते हैं? इतना मानी का फर्क होने लगता है। मसलन आप देखिए कि आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी लफ्जों को अच्छी तरह पढ़ने की। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा हदी कल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे दे या मुझे सीधा रास्ता दिखा। अब अगर आप इसको अल्लाहुम्मा हदी कल्बी की बजाय पढ़ लें अल्लाहुम्मा हदी कल्बी, हम अमूमन तो काफ को काफ ही कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या बनता है? ए अल्लाह मेरे कुत्ते को हिदायत दे दे। कल्ब कुत्ते को कहते हैं अरबी में। अब आप बताइए, आप कुत्ते की हिदायत मांग रहे हैं या हम अपनी मांग रहे हैं? बीसियों मिसालें हैं। सिर्फ आइन और हमजा के फर्क से मानी बदल जाता है। लफ्जों की पहचान नहीं हमें आती क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं। जब पढ़ते नहीं तो दिल में नहीं उतरता। आज भी कुरान पाक को जब आप उसके सही जगह से पढ़ेंगे आपके दिल पे उतरेगा। जब आप किसी की बहुत अच्छी तिलावत सुनते हैं तो आपका दिल हिलता है कि नहीं, पिघलता है कि नहीं? ऐसे लगता है कि जैसे ना भी समझ जाए लेकिन एकदम उसमें एक कशिश होती है। तो पहला काम अल्लाह के नबी सल्लम की इत्तबा में करना है तो हमने तिलावत करनी है। कैसी? कम अज कम उसके लफ्जों का हक तो अदा करें। कल क्या कहेंगे अल्लाह ताला को? हमने इंग्लिश सीख ली, हमने स्पेनिश सीख ली, हमने फ्रेंच सीख ली, हमने उर्दू सीख ली, हमने साइंस सीख ली, केमिस्ट्री सीख ली, कंप्यूटर सीख लिया। नहीं सीख सकी तो एक अरबी जुबान हम सही नहीं सीख सके, और वो भी पूरी नहीं, सिर्फ कुरान का हिस्सा। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लम का जो मक्की दौर था तो उसमें बहुत, आपको पता है कि मुसलमानों पे मुश्किलात आती थी और लोग दुश्मनी करते थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे साथ जो थे बहुत फयाज और बहुत खिदमत करने वाले लोगों की, उनको भी लोगों ने इतना तंग किया कि उन्होंने कहा कि मैं अब मक्का में नहीं रहता, और उठे और जाके हिजरत करने लगे। अब उस दौर के लोगों में और अगर बहुत सारी बुराइयां भी थी लेकिन ये खूबी जरूर थी कि रवादार बहुत थे, जैसे एक दूसरे की इज्जत का बहुत ख्याल करते थे। जब उनको पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा इतना नोबल पर्सन हमारे जुल्म की वजह से चला गया तो लोग तो हमें बहुत बुरा कहेंगे, तो उन्होंने एक शख्स को भेजा और कहा कि जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। वो शख्स आया और कहने लगा, उसने अबू बकर सिद्दीक को बुला के तो अपने सारे लोगों के पास लाया और कहने लगा कि देखो आज के बाद अबू बकर सिद्दीक जो है ये मेरी पनाह में है, यानी मैं इनको अपनी कस्टडी में देता हूँ, आज के बाद आप इनको कुछ नहीं कहेंगे। और ये उस दौर का रिवाज था, कोई एक शख्स भी कह देता था कि ये मेरी पनाह में तो फिर बाकी लोग उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करते थे। लोगों ने कहा कि ठीक है, हम अबू बकर सिद्दीक को कुछ नहीं कहेंगे, बस एक ही शर्त है हमारी, और वो क्या कि ये मस्जिद में आके कुरान नहीं पढ़ेंगे, यानी बैतुल्ला में आके इबादत नहीं करेंगे, घर में बैठ के जो मर्जी करें। कहा अच्छा ये बात है। अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि आपको ये शर्त मंजूर है? कहा हाँ मुझे मंजूर है। कहा ठीक है चले गए। अब मस्जिद में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, बंदा मोमिन के लिए तो अल्लाह ताला ने हर कोने के अंदर खैर रखी है, अपने घर के कोने को मस्जिद बना लिया। यहाँ गौर कीजिएगा, घर में नहीं नमाज पढ़ी बल्कि घर के कोने को मस्जिद बना लिया, क्योंकि उनको पता था ईमान वाले मर्द मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं। और नमाज पढ़ी, अब वहां सुबह शाम कुरान की तिलावतें और नमाज होने लगी। चंद दिन नहीं गुजरे कि पड़ोस के जो लोग थे वो मिल के आ गए, कहने लगे कि अबू बकर आप जहां मर्जी जाके कुरान पढ़े लेकिन अब घर में नहीं पढ़ सकते। क्यों? कहा कि आपके कुरान पढ़ने के सोच से हमारे बच्चे और हमारी औरतें मुसलमान हो रहे हैं। जरा गौर करके देखें, यानी उनका कुरान का पढ़ना दूसरों को कैसे बदल दे, और आज हम कुरान पढ़ें तो किसने को हिदायत मिलती है। तो लिहाजा अगर अल्लाह के नबी सल्लम से मोहब्बत का दावा है तो आज हमने एक नियत करनी है, और वो क्या कि हमने कुरान पाक को अरबी लबो लहजे में सीखना है। मखारिज तो ठीक हो, कम अज कम अरब की गलतियां तो ना हो। हम जब कुरान पढ़ते हैं जरा सोचिए तो सही, अल्लाह तआला को कैसा लगता होगा। हम किसी चार लोगों के बीच में ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते, क्यों? शर्म आती है। और किसी को पता हो आता है उसके सामने तो हम सुना ही नहीं सकते, क्यों? झिझक आती है। जरा सोचे हमें ना भी किसी को सुनाएंगे, अल्लाह ताला भी तो सुनता ही है ना जब हम बोलते हैं, तो वो क्या कहता होगा। मैं आपको मिसाल दूंगी, अगर किसी शायर का कलाम हो या अगर किसी की बात कही भी आप दूसरे को सुनाएं और उसको पता चले कि ये मेरी बात बड़ी मुंह बिगाड़ बिगाड़ के बता रहे थे। मतलब अगर चले, अगर मैं भी आपके साथ बात कर रही हूँ, बाद में आप में से कोई मेरी बात को बड़ी बिगाड़ बिगाड़ के बताए, मुझे जब पता चले तो मुझे कितना दुख होगा कि आपने मेरी बात ऐसे बताई। आप सोचिए अल्लाह का कलाम, और जब हम पढ़ के सुनाते हैं तो क्या वो बिगाड़ने वाला अंदाज नहीं होता। बहुत ज़रूरत है इस बात की कि कुरान पाक को सही तरह से अदा किया जाए। कोई शर्म की बात नहीं होती, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी में मौके दिए हैं। अगर बचपन में हम नहीं सीख सके अब क्या हो गया, जवानी में नहीं सीखा बूढ़ों को सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80 साल की ख़वातीन तक को मैंने देखा है कि इतने शौक से कुरान पढ़ती हैं। पहले नहीं आता था, अब जब पढ़ने लगे तो बहुत ही खूबसूरत पढ़ने लगे। और फिर उसके बाद आप देखिए कि दूसरा काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो क्या था, वह युज़क्कीहिम, तस्किया। तस्किया किसको कहते हैं? ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कुरान पाक में। तस्किया का मतलब क्या होता है कि बुरी चीज़ों को निकालना और अच्छी चीज़ों को लाना। यानी जैसे माली जो है या कोई गार्डनर है वो कोई बीज लगाता है तो बीज लगाता है, खाद डालता है, लेकिन साथ साथ जड़ी बूटियां भी उतारता है। अल्लाह के नबी सल्लम का कारनामा क्या था कि लोगों की इस तरह से तरबियत करते थे कि ना सिर्फ उनको नेकियों के करने का हुक्म देते थे बल्कि बुराइयों को निकालने का भी हुक्म देते थे। अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं, अपने आप को अगर हम देखें कि हम नेकियां करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, हम लोग रोजे रखते हैं, हर काम जो नेकी का वो करते हैं, इबादत की सूरत में कोई भी मौका आता है हम पीछे नहीं रहते अल्लाह का हुक्म से, लेकिन क्या उसी तरह गुनाह भी छोड़ते हैं? क्या हम अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ते हैं? क्या नाफरमानियों को छोड़ते हैं? क्या हम ऐसे कामों से अपने आप को पीछे करते हैं जिसका हमें सरासर यकीन है कि ये गुनाह है? क्या हम गिबतों को छोड़ते हैं? क्या हम चुगलियों को छोड़ते हैं? क्या बेदीनी, बेहयाई, बेपर्दगी और हर वो चीज़ जो शैतान को खुश करने लिए वो छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते तो नतीजा क्या निकलेगा? वो नेकियां कहाँ जा रही हैं? उस बुराइयों के साथ मिलके खलत मलत हो गई। बस आप देखिए कि अगर आप एक गिलास है उसके अंदर आधा गिलास पानी है और वो गंदा है, कीचड़ वाला पानी है, बाकी आधा ग्लास अगर आप उसमें जमजम भी डाल दें तो क्या जमजम उसको साफ कर देगा? नहीं, वो गंदी चीज उसको भी जाया कर देगी। तो जो बुराइयां होती हैं ये इंसान को जाया कर देती हैं उसकी नेकियों को। हमारे यहां एक रुझान बहुत ही जोर पकड़ गया, और वो क्या कि हम इबादत को तो करना चाहते हैं, कोई खास मौका आता है तो भी, नहीं भी होता तो खुद भी अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, लेकिन बुरा हमें क्या लगता है और मुश्किल क्या लगता है? गुनाहों को छोड़ना, ये नहीं छोड़ सकते। अपना लाइफ स्टाइल नहीं छोड़ सकते, तर्ज जिंदगी छोड़ना मुश्किल है, स्टेटस कुर्बान नहीं कर सकते। रिश्तेदारियों के अंदर अगर कोई खुराफात है तो उससे हम पीछे नहीं हट सकते। अगर किसी में कोई बिदत है, कोई बेदीनी, उसको नहीं छोड़ सकते, नेकियां करते रहेंगे। तो फिर याद रखिए कि अल्लाह ताला को तो बंदे से यही मतलब है कि मेरा बंदा कब बनता है? जब वो मेरी खातिर नेकियां भी करे, अच्छे काम भी ले और बुराइयां भी छोड़े। जैसे मसलन आप देखिए कि हम कितना कुरान सुनते हैं या कितनी अच्छी बातें भी सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल पे असर क्यों नहीं करता उनका? हमारे अमल में वो चीज क्यों नहीं डलती, क्योंकि वो जैसे डिलीट होने वाली बात है ना, एक का असर दूसरी चीज खत्म कर देती है। किसी की एक बात मैंने कहीं सुनी, तो कुछ लोग मौलवी साहब के पास आए तो कहने लगे कि मौलवी साहब कुएं में कुत्ता गिर गया, यानी कुआं होता है ना, वेल, पानी था उसमें कुत्ता गिर गया, अब क्या करें। तो मौलवी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप पानी जितना उसके अंदर है उसको सारा निकाल दो, दीवारें वगैरह साफ करो, फिर जो आगे से पानी आएगा वो उसको साफ कर देगा। चले गए, फिर कुछ दिन गुजरे, फिर कहने लगे मौलवी साहब पानी तो अभी भी गंदा है। क्यों भाई, तुमने सारा पानी निकाला था? हाँ निकाल दिया था, दीवारें साफ कर ली थी, कर ली थी, तो कहा अब पानी क्यों गंदा है? कहने लगे वो भी कुत्ता तो अंदर ही है ना, आपने कहा ही नहीं कि कुत्ते को निकाले। अब ये बात तो है किसी की, लेकिन याद रखें कि जब तक दिल से गुनाहों के कुत्ते नहीं निकलेंगे, नेकियों का फायदा नहीं होगा। आप घर में सफाई जितनी मर्जी आराइश कर लें, अगर कचरा नहीं उठाएंगे, ट्रैश नहीं उठाएंगे, वैक्यूम नहीं करेंगे, वो खूबसूरत डेकोरेशन पीस भी अच्छे नहीं लगेंगे। हम जब किसी भी जगह कोई घर को सजाते हैं या कोई अच्छा डेकोरेशन पीस लाते हैं, क्या करते हैं? पहले सफाई करते हैं ना, सारी चीजों को झाड़ते हैं, दीवारों को साफ करते हैं, जाले लगे हैं उसको उतारेंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करें, फिर एक छोटा सा भी आप पीस लगा देते हैं ना दीवार पे, कोई शो पीस, तो वो खूबसूरत लगता है, सजता है, उठता है। लेकिन घर उटापटा हो और बिखरा हो और आप चाहे जितनी मर्जी क्रिस्टल सजा दें, एक आंख नहीं भाएगा। इसी तरह याद रखिए कि दिल की दीवारों पे भी कुछ सजाने के लिए दिल से गुनाहों को निकालना है। और आप देखिए कि वक्त कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं आज, इस वक्त जिंदगी कितनी मुख्तसर है, आज इंसानियत कितने खतरों की जद में। एक हमारा ही बनाया हुआ हथियार हम सबको हलाक करने के लिए काफी है, एक झटका जमीन को लगे हम कहाँ जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी, और अगर हमने इसको अपनी मर्जी से गुजार लिया, तो फिर याद रखिए कि वो हमेशा की जिंदगी जो रब की है वो उसकी मर्जी की होगी। अगर आज हमने उसकी मानी, कल वो हमारी मानेगा। ये एक बहुत खूबसूरत असूल है, ये दुनिया रब की चाहिए, जैसी रब चाहे वैसी गुजारेंगे, तो वो दुनिया लहुम फी हमा यश्तहून, उनको वो कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? ये दुनिया भी हमारी मर्जी की हो और वो भी हमारी मर्जी की हो, दो चाहते इकट्ठी नहीं मिलती, यहाँ उसकी मर्जी वहां हमारी मर्जी। और है कितने दिन की दुनिया, अगर इंसान एक लम्हे के लिए गौर कर ले तो आज अगर सांस रुक उखड़ जाता है तो पीछे क्या है हमारे पास? अगला लम्हा, अगला कदम हमारा कब्र में होगा। तो लिहाजा दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमने करनी है, वो क्या है कि अपनी जिंदगी से गुनाहों को प्लक करना है। जैसे एक एक बाल प्लक करते हैं ना अपना, कि कहीं दिख ना जाए, किसी को वो बाल नहीं दिखता और हम उसके साथ लड़ रहे होते हैं कि ये निकालना है, ये बड़ा बुरा लग रहा है चेहरे पे, किसी को नहीं पता। हमें बाल तो दिखते हैं, हमें अपने पोर्स में फंसी हुई मैल दिखती है, हमें अपने गुनाह क्यों नहीं दिखते? हमें क्यों नहीं तकलीफ होती उस वक्त जब हम अपने आप को गुनाहों की बदबू से देखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बू आती है जिसके वजह से जो रहमत का फरिश्ता है वह 1 मील दूर चला जाता है। कभी हमने महसूस की है? वो कोई ब्रश ना करे तो हम कहेंगे बहुत बू आ रही है, कोई शावर ना ले तो उससे हमें बू आती है, क्या हमें गुनाहों से भी बू आती है? और जब बंदा गुनाहों की बू खत्म कर देता है ना, तो फिर याद रखिए कि वो बंदा बहुत ही गंदा हो जाता है। किसी भी जगह आप जाते हैं, वहां अगर स्मेल आती है, अगर आपकी सेंस कायम रहे तो आप खोज निकाल लेंगे कि आखिर क्या चीज खराब थी, उसको उठा दो। लेकिन अगर आप थोड़ी देर में यूज्ड हो जाएं, आप कोशिश ही छोड़ देंगे। इसी तरह आप देखिए कि जब शुरू में इंसान गुनाह करता है तो उसको बू आती है, तकलीफ होती है, पहले दिन गुनाह करना बहुत मुश्किल होता है, कदम भी लड़खड़ा रहे होते हैं, बंदा खौफ से कांप रहा होता है, होंठ भी खुश्क हो रहे होते हैं, कोई मजबूरी में जबरदस्ती में आपको किसी जगह ले जाए, फिर बाद में क्या, पहली दफा ऐसा है, और अगर दूसरी दफा जरा थोड़ी कम घबराहट होगी, तीसरी दफा आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुरी बात है, और नतीजा क्या होगा कि फिर आगे से आगे, आगे से आगे जाएंगे। तो लिहाजा अपना भी तज़किया करना है, अपनी औलादों का तज़किया करना है, जिस हद तक मुमकिन है अपने आप को, ठीक है नेकियां करेंगे, अच्छे काम है, लेकिन बुराइयों को निकालना लाजिम है। और वो कब निकलती है? जब इंसान की जिंदगी में इल्म आता है। इसीलिए अगला काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको तालीम दी किताब की। यानी पहले क्या थी? तिलावत, उसमें लफ्जों की बात थी, अब तालीम है। तालीम क्या होती है? अल्लामा युअल्लिमु तालीम, किसी को थोड़ा थोड़ा करके सिखाना। जैसे आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, पहले प्राइमरी में होते हैं, फिर उसके बाद मिडिल में जाते हैं, फिर हाई में, थोड़ा 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 करते हैं, फिर बिलाखिर उनको बहुत आने लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह कुरान पाक की तालीम थोड़ी थोड़ी करके हासिल करना। और जब कोई चीज़ थोड़ी हासिल करते हैं तो उसको वक्त भी लगता है, तो इसमें इशारा क्या है कि कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे कुरान को समझना। चले हम सब अपने आप को देखें, क्या हम कुरान पाक को समझते हैं? कौन सी आयत कहाँ उतरी, वो हमसे क्या कहती है, उसमें अमल की क्या बात है? सच्ची बताएं, हम सब अपने आप से पूछें कि क्या मुझे कुरान पाक की आयतों की समझ आती। यानी सहाबे कराम में से बाज़ ऐसे भी थे कि वो दावा करते हैं कि हमें एक एक कुरान की आयत का शान नजूल पता है। कब ये नाजिल हुई, ये गर्मियों में नाजिल हुई थी या सर्दियों में नाजिल हुई थी, ये मक्का में नाजिल हुई या मदीना में। अब हमें कोई कुरान पाक उठा के पकड़ाए और कहे ये लो ये है तुम्हारी किताब, जरा ये मुझे बताना तो सही कि ये फलां आयत क्या कहती है। बस अगर सादा कुरान ही को मुझे या आपको रास्ते में चलते हुए पकड़ा दे कि ये तुम्हारी किताब है, ये जरा यहां से पढ़ के तो सुनाओ, उस वक्त किसको फोन करेंगे, किस आलिम का नंबर लेंगे, किस आलिमा का नंबर लेंगे, किस उस्ताद को ढूंढेंगे? उसको तो पता चल जाएगा ये हमारा इस्लाम कैसा है। खाना पकाते हैं जुबानी याद है ना। आपने कभी देखा है कि अगर आपको देख देख के कोई रेसिपी बनानी पड़े तो मुश्किल में जान आ जाती है? कौन देखे, छोड़ो खुद ही अंदाजे से कर लेते हैं। कभी बड़े शौक में आएंगे तो एक खाना पका लेंगे, हर रोज तो नहीं कर सकते। तो कुरान को जुबानी पढ़ना क्या है, जिस तरह आपको अपनी खाना पकाना आम आता है। लेकिन अगर देख देख के पकाते हैं तो वो हाल है कि कुरान को तर्जमे से, और फिर उसमें भी समझ नहीं आता। खाली तर्जमे से बात समझ में आती है? कुरान पाक की कई आयतें खाली तर्जमा पढ़ें तो आप समझ से पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब आप उस्ताद से सुनते हैं तो उसमें कितनी ही अलग बातें होती हैं, बिल्कुल ही मानी बदल जाते हैं। बस आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको गाड़ी चलाते वक्त अगर अपनी साथ साथ नोटबुक खोल के देखना पड़े कि अच्छा किसको हिलाना है, किसको मोड़ना है, किधर करना है, जरा सोचें हम कहाँ पहुंचेंगे। किसी ऐसे को गाड़ी में बैठने देंगे आप कि जिसको जुबानी नहीं याद हो कि मेरे पास सब लिखा हुआ है कि गाड़ी चाबी कहाँ लगानी है, मैं जरा खोल लूँ और देखती जाऊँ। मौत का सफर है ना वो, तो मौत का सफर है, ये ईमान की मौत का सफर है अगर हमें किताब नहीं पता। कि मतलब अगर आप लोगों ने कोई कुरान पाक का हिस्सा या कुछ पारा या कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा ना, कोई आखिरी चीज जो आपने पढ़ी कोई आप में से शेयर करेगा? मतलब कोई कह सकता है मैंने पहला पारा पढ़ा, कोई कहेगा मैंने चौथा पढ़ा, कोई कुछ, आप लोगों में से कोई बताना चाहे, ताकि मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाहती हूँ कि अच्छा अगर ये पारा था तो इसमें ये बातें थी और इसको हमने समझा कि नहीं समझा। कोई शेयर करेगा? आप बताएंगे आपने कौन सा पारा पढ़ा, नंबर उसका याद है पारे का? बहुत दिन से नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला तौफीक दे, कोई बात नहीं जी। आप सूरह कहफ पढ़ी आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छा अमल किया, क्योंकि हर फ्राइडे को आप पढ़ती होंगी जी। आप देखिए कि सूरह कहफ पढ़ी, बिल्कुल हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं ना, आप देखिए कि सूरह कहफ आपने पढ़ी तो आपको उसमें कितनी को बातों की समझ आई अपनी जुबान में, या आपको पढ़ते हुए महसूस कुछ कोई बात समझ आई कि नहीं? नहीं समझ आई। और भी आप लोगों ने भी सूरह कहफ पढ़ी होगी ना, जुमे को पढ़ते हैं, ठीक है। चलें अब सूरह कहफ पे बात कर लेते हैं, मैं इसी तरह चंद लोगों को पिक करके चाहूंगी कि बात करें। अब आप देखिए कि हमने जुमे को सूरह कहफ पढ़ी और सूरह कहफ के अंदर तीन बहुत बड़े बड़े वाकियात हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा और जिसकी बेस पे यानी ये सूरत भी नाजिल हुई थी, जिसमें मटीरियलिज्म का रथ है, जिसमें अल्लाह ताला की तकदीर पे राजी होने की बात है, जिसमें कोई चीज़ बजाहर बुरी लगती है लेकिन उसमें खैर होती है उसकी बात है, फिर उसमें इल्म के सफर की बात है। यानी मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स लिखा दूं जो क्लास में आप लिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि एक सूरह कहफ के हर रुकू से हमने क्या सीखा, तो मेरा लगे हमें 2-3 घंटे चाहिए कि वो सिर्फ अमल की बातें हम लिख सकें सिर्फ एक सूरह कहफ में। लेकिन आपको नहीं पता था तो आप महरूम रह गई होंगी उन चीजों से। मैं जब सूरह कहफ पढ़ती हूँ, मैंने भी कल पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तब आप देखिए कि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं उसके मानी में इतना खो जाती हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैंने पूरी पढ़ी भी कि नहीं पढ़ी और कब पढ़ी और कब छोड़ी। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उर्दू में पढ़ी। फिर हर जगह इंसान अपने आप को चेक करता है ना। बस आप देखिए कि उसमें एक वाक्य है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो खिज़र के साथ कहीं जा रहे थे इल्म के हासिल करने में, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है और वो खेल रहा है, मासूम सा बच्चा है, तो हजरत खिजर ने उसको लेके तो उसको मार दिया। अब मार दिया बजाहर ये काम बड़ा बुरा, तो उन्होंने सवाल किया हजरत खिजर से कि आपने क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि आपको सवाल की इजाजत नहीं है, चलो बात खत्म हो गई, चले गए। फिर आगे गए तो एक कश्ती थी उसके तख्ते उखेड़ने शुरू कर दिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे भाई ये क्यों किया आपने, तो कहेंगे आपको सवाल नहीं करना था। फिर तीसरा एक और था कि एक जगह गए किसी बस्ती में तो वहां खाना मांगा, अब जब खाना मांगा तो बस्ती वालों ने इनकार कर दिया। उस दौर में यानी किसी मेहमान को खाना ना खिलाना ऐसी था जैसे उसकी मौत है, क्योंकि वहां होटल्स तो नहीं थे जैसे आज आम है। तो उन्होंने खाना ना दिया, लेकिन खिजर जो थे उन्होंने वहां किसी की दीवार जो गिर रही थी उसको सीधा करना शुरू कर दिया। अब जब सीधा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोले कि आप अजीब हैं, एक तो इन्होंने खाना नहीं दिया, दूसरे आप इनके बगैर मजदूरी के काम कर रहे हैं, कुछ पैसे ही ले लेते। तो अब ये तीन काम बज़ाहिर अपेरेंटली हम सबको भी लग रहा है कि मायूब काम है, लेकिन आप देखिए कि उसकी हिकमतें जब मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुई और कैसे हुई वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कि वो बच्चा जो है उसके माँ बाप बड़े नेक थे और अल्लाह के इल्म में था कि ये बच्चा बड़ा होके बहुत बुरा बनेगा, माँ बाप की रुसवाई का बायस बनेगा, तो बजाय इसके कि बड़े होके माँ बाप बददुआ दें कि तू पैदा होते ही मर जाता, माँ बाप देते हैं ना ऐसी बददुआएं, आज तेरी वजह से हम रुसवा है, हजरत खिजर ने उसको मार दिया। फिर दूसरा जो था कि कश्ती के तख्ते जो थे वो उखेड़ने वाले थे, तो उसका पता चला कि दरिया वो यतीम लड़कों की कश्ती थी। अब दरिया के जो दूसरे किनारे पे एक बादशाह था, जालिम था, वो जो भी बड़ी अच्छी खूबसूरत साफ सुथरी कश्ती होती उसको ले लेता था, और जरा पुरानी पुरानी जो होती थी उनको नहीं लेता था। अब वो लड़कों को तो ये कि हमारी कश्ती बड़ी अच्छी नई है मजा आएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि ये नई कश्ती उनकी मौत है, कि वहां जाके बादशाह ले लेगा और इनके पास कुछ नहीं रहेगा, तो बेहतर है जरा उसको पुरानी कर दो लेकिन गुजारा होता रहेगा। इसमें ये हिकमत थी। और तीसरी जो बात थी उसमें कि जो दीवार गिर रही थी तो वो दरअसल किसी यतीम बच्चों की थी, माँ बाप जो थे नेक थे उन्होंने जब मरने लगे तो अपना खजाना एक दीवार के नीचे दफन किया कि इस ऊपर दीवार चुन दी। उस दौर में ऐसे ही था, कोई बैंक से तो थे नहीं कि चलो जब ये बच्चे बड़े होंगे उसी दौरान ये दीवार भी पुरानी होगी, जब गिरेगी ये सही करने के लिए नहीं बनाएंगे तो नीचे से खजाना निकलेगा। हुआ क्या कि वो दीवार वक्त से पहले किसी वजह से पुरानी हुई, तो उम्मीद ये थी कि बच्चों के बड़ा होने से पहले ही वो दीवार जो है वो गिर जाए, इसलिए उन्होंने वो उसको दोबारा मजबूत कर दी कि कुछ और साल जम जाए। अब देख तीन कहानियां ना, अब इसकी बुनियाद में अल्लाह ताला हमें कितने ही सबक देता है। बज़ाहर जो चीजें हमें दिखती हैं वो वैसी नहीं होती, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। बाज दफा एक चीज शर लगती है लेकिन खैर होती है। अब देखिए कि अमली जिंदगी में हम कई दफा नहीं परेशान होते, हमें समझ ही नहीं आता ये हुआ तो क्यों हुआ, ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैं तो कब से ये चीज मांग रही हूं मुझे क्यों नहीं मिल रही। लेकिन अगर हमें सूरह कहफ आती है, अगर हमने ये वाक्या पढ़ा हुआ है, आप जूं ही किसी आजमाइश में आएंगे ना, बज़ाहर आपने सोचा कुछ तो हो कुछ गया, तो आपका दिल गमजदा नहीं होगा, आपको फौरन ये वाक्या याद आएगा, अच्छा ये हिकमत थी, और अल्लाह के कामों में हिकमत है। और इस तरह फिर कुरान आपके दिल की बहार बन जाता है, फिर आपके दिल की ठंडक बन जाता है। हम दुआ करते हैं ना कि अंतजलिल कुरान अलअज़ीम रबी कल्बी व नूर सदरी व जला हुजनी व जहाब गमी व हमी, कि अल्लाह इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, हमारे गम की दवा बना दे, हमारी बीमारियों की शिफा बना दे। ये कब बनता है? जब हमें ये समझ आता है। कोई और मिसाल देना चाहेगा कि उन्होंने आखिरी कौन सा पारा पढ़ा है, या कोई सूरत आप लोगों में से, आपने कौन सा पारा पढ़ा? 12वां पारा पढ़ा आपने, और पूरा आपने पढ़ा 12 पारा, समझ में आया आपको? हाँ अच्छा जी, तो कितना आपको उसमें क्या लगा, कितने परसेंट समझ आया होगा आपको? कोई खास समझ नहीं आया आप में से कोई? आपने कौन सा पारा पढ़ा? 13वां पढ़ा आपने, इनके आगे का कंटिन्यू करा, कुछ समझ में आ रहा था उसमें? थोड़ा बहुत आ रहा था जी। आपने कौन सा पारा पढ़ा? जी जी आपने सूरह कहफ पढ़ी, और भी कोई पढ़ा? आपने क्या पढ़ा? आज नहीं कल पढ़ा था। अब देखिए कि इन्होंने 12वां और इन्होंने 13वां पढ़ा, इन दोनों को मिला लें तो इसमें सूरह यूसुफ बनती है। और जी सूरह यूसुफ 12वें में शुरू होती है, 13वें में खत्म होती है, और सूरत यूसुफ मैं कहती हूँ कि हर शादीशुदा खातून को पढ़ने की जरूरत है। रिश्तों की हकीकत, हसद बुगस, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे डीलिंग करनी है, कैसे नेमतों को छुपाना है, कैसे जाहिर करना है, बेहतरीन सूरत है। यानी मैं कहती हूँ जिस बच्ची की शादी होने वाली है उसको पहले सूरह यूसुफ पढ़ाओ समझ के। ये नहीं कि वजीफा बता रही हूँ कि सूरह यूसुफ का वजीफा शुरू कर दें, हमारा हाल क्या कि हम वजीफे करते हैं। मैंने लोगों को देखा है, लोग प्रेगनेंट औरतें सूरह यूसुफ पढ़ती हैं, क्यों? कि बच्चा खूबसूरत होगा। मैं जब पूरी सूरह पढ़ाती हूँ ना किसी जगह, वो पढ़ते हैं आसानी के लिए, थोड़े से वजीफे मुझे भी आते हैं, यानी लोग इस तरह कर। अब सूरत यूसुफ जब पूरी तफसीर पढ़ते हैं ना लोग, अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन लगते हैं हमें इसको पढ़ने में, फिर उसके बाद जब मैं ये हदीस बताती हूँ ना लोगों की रिवायत के, देखे अब बताएं कि लोग इसको पढ़ते हैं इसलिए कि बच्चा खूबसूरत हो, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं कि वाकई ये तो एक जोक है। अगर इस सूरत के पैगाम पे अमल हो जाए तो इंसान अंदर से कितना खूबसूरत हो जाए, उसका किरदार कितना निखर जाए, उसका अखलाक कितना अच्छा हो जाए, उसके मामलात कितने अच्छे हों। और हम ज़ाहरी शक्ल के लिए पढ़ते हैं जिसकी कोई सनद नहीं। सूरह मरियम इन्होंने कहा कि पढ़ते हैं लोग आसानी के लिए, हालांकि सूरह मरियम का पैगाम आप पढ़ लें। मैं कहती हूँ आज यहाँ हम पढ़ने वाले सूरह मरियम को पूरी समझ लें, हम नॉन मुस्लिम्स के साथ बेहतरीन किस्म की दावा कर सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश, बचपन, बीबी मरियम और उनकी कहानियाँ ए टू जी उसमें रखी हुई हैं। तो बात क्या है, सारी बात का एक ही खुलासा है कि जब तक इस किताब को पढ़ के समझेंगे नहीं, अपनी नहीं लगेगी। मुझे तो अपनी नहीं लगती थी, सच्ची बताऊं। एक बोझ था, एक जिम्मेदारी थी, एक मजहबी जिम्मेदारी थी पढ़ना है जी। माँ बाप भी कहते हैं पढ़ो कुरान, बच्चों को हम कहते हैं पढ़ो, हम क्यों इनको जबरदस्ती भेजते हैं पढ़ने को? समझ नहीं आता गरीबों को। आप यकीन करें, जब बच्चे क्लास में मेरे साथ, जब मेरी टीनेज बच्चों की क्लास है, छोटे बच्चे हैं, आप अगर आप मेरे हाल आपके भी बच्चे हैं ना, आप उनको बुलाएं कि जिस वक्त हम तफसीर कर रहे होते हैं कि इनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, एक बच्चा नहीं हिलता। क्यों? इनको समझ आ रही होती है। हम उसके अंदर से स्टोरीज को डिस्कस करते हैं, हम उसमें से बातों को देखते हैं। और अगर मैं जरा इनको वो छोड़ दूं और मैं सिर्फ तिलावत सुनाऊं तो ये सोने लगेंगे। तो असल बात क्या है कि सोती हुई उम्मत को जगाना है, कुरान पाक को समझना है। नियत करें हम सब के वाकई अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो फिर यहां से उठने से पहले अल्लाह से दुआ भी करनी है, और उसकी कोशिश, दुआ क्या करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी इस किताब की समझ दे दे। क्योंकि जब तक किताब समझ नहीं आएगी, बंद किताबें बरकत नहीं देती। बनी इसराइल क्यों उतारे गए मनसब से? उन्होंने अपनी किताब को बंद कर दिया और उसकी जगह खुशफहमियों में पड़ गए। ये फायदा दे लेगा, ये बचा लेगा, और झूठी तमन्नाएं, फलां दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नती हो, फलां काम कर लो तो बख्शे जाओगे। जब तक ये किताब नहीं आती, अमल की, इंसान की कोशिश जो है वो आसान नहीं होती। और फिर चौथा काम जो अल्लाह के नबी का इस काम में वो क्या है, वह हिक्मा, हिक्मत सिखाए। हिक्मत दो तरह से हम समझते हैं, यानी एक तो क्या है हिक्मत से मुराद हदीस, क्योंकि किताब के साथ जहां भी हिक्मत है वो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लम के अल्फाज। और दूसरा, अगर हिक्मत को असल हिक्मत में लें तो मतलब है कि हाउ टू डील विद पीपल। हिक्मत, हिक्मत से ना उर्दू में भी कहते हैं, फलां को बात करने की बड़ी हिकमत है, फलां को बड़ी मामला फहमी है। अब अगर हम देखें कि अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस क्या, हमारा अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस के साथ ताल्लुक है, हम खुद देख सकते हैं। हदीस की जो मुस्तनद 6 किताबें हैं, अगर मैं हम सबको, अपने आप को अपने अंदर रख लेती हूँ, चलें आप सबको भी दावत दूँ कि हम में से कौन है जो वो 6 किताबों के नाम हमें बता दे, अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में जो आपके कॉल फेल या आपकी तकरीर थी उसकी कोई 6 मुस्तनद तरीन किताबें जिस पे हर इंसान का यकीन है कि ये मुस्तनद है, वो 6 किताबें हमें आते हैं उनके नाम, हमारे बच्चों को आते हैं? उन किताबों को किसने लिखा, उन 6 के लिखने वाले इमामों के नाम आते हैं? उसमें कितने बाब हैं ये आते हैं, कितनी जिल्दें हैं ये आती हैं, कितने लफ्ज़ हैं ये आते हैं? आप में से कोई भी बता सकता है? चलें ये सब कुछ छोड़ दें, एक हदीस, सिर्फ एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान की बोली भी हम उसी तरह उनके लफ्जों में सुना सकते हैं, कहाँ की मोहब्बत? ये झूठे दावे हैं कि सच्चे दावे? जिनको मोहब्बत होती है वो वैसा बनना चाहता है, वो लफ्ज बोलता है, वो उन अदाओं से प्यार करता है जो आपकी थी। एक सहाबी है, वो हदीस नकल करते हैं, हदीस बयान करते करते अपनी कमीज का बटन खोलने लगते हैं। लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहा वो असल में जब मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से ये हदीस सुनी थी तो उस वक्त आपकी कमीज का बटन खुला हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपकी सुन्नत पूरी कर लूं, मैं भी आपकी अपना बटन खोल दूं। एक एक अदा से मोहब्बत करते थे। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा कहीं से गुजर रहे थे सफर में, एक खास जगह पे आए, अपनी सवारी से उतरे और जैसे इंसान कजाए हाजत के लिए बैठता है अब उस तरह बैठ गए, थोड़ी देर बैठे और उठ के दोबारा चल पड़े। जो साथ था उसने कहा कि ये आपने क्या किया, मैंने देखा कि आपको कोई हाजत की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही बैठ गए। कहा हाँ, मैं क्यों बैठा, अल्लाह के नबी सल्लम के साथ मैंने एक दफा इसी जगह से सफर किया था और ठीक इस मुकाम पे नबी सल्लम अपनी हाजत से फारिग हुए थे, तो आज मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इस सुन्नत से महरूम क्यों रहूं, मैंने आज आपकी मोहब्बत में ये काम किया। मोहब्बत बोलती है, मोहब्बत दिखाती है अपना आप। और अगर आज हमें नहीं, आज हमने ये काम ना किए, कल हमारी नस्लें कहाँ करेंगी? यानी आप गौर करें आज हम किस सियाह दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बतों के दावे उनके पैदाइश के दिन हम मनाएं, हम उनकी यानी रस्में करें, लेकिन हमें नहीं पता तो हमें एक हदीस नहीं आती, कहाँ हम पनपेंगे? हमें आज कहाँ से पनाह मिलेगी? चारों तरफ से दुश्मन सर पे, क्यों? उनको पता है कि ये कौम अपने दीन से उखड़ चुकी, जिसने अल्लाह के दीन को पहुंचाने वाले नबी की सुन्नतों को याद नहीं रखा। कहाँ हम अपने घर को, ए टू जी पूरे घर को देख लें, एक एक कमरे में जाके बैठ के देख लें, पूरे घर में कहाँ कहाँ सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, खुद ही मोहब्बत पता चल जाएगा। अपने लिबासों को चेक कर सकते हैं हम लोग, ये मेरे लिबास अगर अल्लाह के नबी सल्लम आ जाए तो मैं उनके सामने पहन सकती हूँ। अपने खाने, अपने बोलने, अपनी महफिलों, अपनी शादियों, अपनी गमियों के रंग ढंग देख लें, पता चल जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। तो बात सारी का खुलासा ये है कि असल सच्ची मोहब्बत है उस पैगाम से मोहब्बत है। वो काम करना जो आपने किया, जो मनसब आपका था वो हमने निभाना है। अल्लाह ने हमें उम्मत वसत कहा, बेहतरीन उम्मत कहा, शहादत हक की गवाही देने वाला कहा कि तुमने गैर कौमों को इस्लाम का पैगाम देना है। हमें तो खुद नहीं आता, हम किसी को क्या पढ़ाएंगे? पहले अल्लाह के नबियों के जरिए से पैगाम जाता था, हमारे नबी आखिरी नबी हैं। जिस तरह अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, अब क्यामत तक के लोगों को हमने देना है। हमारी गर्दनों पे ये जिम्मेदारी है, ये बोझ है हमारे ऊपर, कर्जा है उनका। कल क्यामत के दिन हमारे गिरेबान होंगे और इनके हाथ होंगे कि अल्लाह ये हमें नहीं बताते थे। और हम तो इतने करीब बैठे हुए लोग, हमारे पास तो इतने मौके हैं गैर मुस्लिमों को दीन देने के, लेकिन कब देंगे? जब हमारे पास होगा, हमारे अंदर ही नहीं तो उनको कहाँ से देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस मौके पे हम नियत करें कि इसी काम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। वरना याद रखिए कि अल्लाह ताला का इंसाफ बड़ा बेलाग है। बनी इसराइल, जिसको आज हम यहूदी कहते हैं, ये अपने वक्त की मुसलमान कौम थी। अल्लाह ने इनको चुना था अपने पैगाम को आम करने के लिए। ये खुशफहमियों में पड़ गए, किताब बंद कर दी, उसको कोई हाथ ना लगाए। ये बड़ी बाबरकत चीज है, ये सिर्फ पादरी साहब खोलेंगे। और हम क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ वजीफे करेंगे, आरजुएं रखेंगे, तमन्नाएं रखेंगे कि हम नबियों की औलाद हैं इसलिए बख्शे जाएंगे, हम इब्राहिम के पैरोकार इसलिए बख्शे जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी सारी खुशफहमियां खत्म की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद कहा कि अब तुम पीछे हटो और उम्मत मोहम्मदिया आगे आ गई। दूसरे पारे की पहली आयत हम सब की आंखें खोल सकती है। अगर यहूद के साथ आज अल्लाह ताला का ये मामला हुआ तो कल हमारे साथ नहीं होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कुरान के बाद कोई दूसरी किताब नहीं है। वरना याद रखे, जिस तरह आज हम अपनी किताब में यहूद की बातें पढ़ते हैं, नसारा की बातें पढ़ते हैं, अगर हमारे बाद कोई किताब लिखी जाती तो उसमें हमारी बातें होती। आज कौन सी बात है जो हम में नहीं और जो दूसरों में थी? वो इतने बुरे नहीं थे, हम उससे भी आज बुरे हो चुके, लेकिन पर्दा क्यों रखा हुआ अल्लाह ने? क्योंकि आज हमारे बाद कोई किताब नहीं। तो अगर हमने वाकई अपनी नस्लों को बचाना है, सच्ची मोहब्बत दीजिए उनको, अल्लाह के नबी सल्लम की सीरत सिखाइए, आपकी वाकियात, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत, आपके तौर तरीकों से प्यार, फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके घरों में जो बरकत और रहमत होगी। बहुत सारे मौके अल्लाह ने आपके लिए रखे हुए हैं और सिर्फ आपको एक दफा अंदर तलब पैदा करने की देर है, तड़प पैदा करने की देर है, आप हर चीज से फायदा उठा सकते हैं। आज हमारी नस्लें क्यों बिगड़ रही हैं कि आज की माँ अच्छी नहीं, आज के मुसलमानों को अच्छी माँ ही नहीं मिली। पहले माओ के कुछ और ही फिक्र थे, पहले माओ की तरजीहात और थी। वो बच्चों को दूध पिलाती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, और छुड़वाती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी। वो बच्चे की तरबियत एक मुजाहिदाना तरीके से करती थी। आज उस माँ के पास इतना वक्त ही नहीं कि बच्चे को दूध भी पिला। पहले माँ की तरजीह क्या थी कि बच्चे को मुजाहिद बनाना है, मैंने अपने घर के अंदर दीन लाना है। आज वो माँ अपने जिस्म को सजा रही है, अपने घर को सजा रही है, उसको दुनिया को सही करना है। नतीजा क्या है कि बच्चे बेचारे परेशान हैं। यकीन करें, जितने टैलेंटेड आज के बच्चे हैं, मैं कहती हूँ अगर आज माएँ मेहनत कर लें, इंशाल्लाह ताला फिर मोहम्मद बिन कासिम भी पैदा होंगे, इंशाल्लाह फिर हसन और हुसैन जैसे बच्चे भी आएंगे। लेकिन ज़रूरत है आज फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी माओ की, क्योंकि माँ फातिमा होती है तो बेटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जैसे होते हैं, और अगर माँ मरियम होती है तो बेटा ईसा जैसा होता है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह की माएँ भी बनाए और ऐसी ही अच्छी तरबियत करने वाला बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।